मेरे प्रिय नौजवान साथियों नमस्कार। आज 20 जुलाई 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय में हम सब बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव की जो एक दूसरी शब्दावली थी एकल संक्रमणीय मत, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और आपको मालूम है कि ठीक इससे एक दिन पहले यानी कि कल हम लोग आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। अब ये उसी का दूसरा पार्ट है आप कह लीजिए और आखिरी पार्ट है, इसे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए जो दो महत्वपूर्ण जो खबरें हैं उन पर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। फ्रेंड्स न्यूज में आपने सुना होगा पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ये कह लीजिए कि पिछले लगभग 20 सालों से बहुत ही उपयोग में लाए जाने वाला शब्द है, खासकर आर्थिक जगत में पीपीपी मॉडल। और इस पर सीधे सीधे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, लेकिन अब चूंकि बहुत लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही है तो अब उतने स्ट्रेट क्वेश्चंस की संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि सुझाव के रूप में आप कहीं भी इस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज में जो बात थी मित्रों उसमें देखा आपने कि आईआईटी के 20 संस्थान खोलने की बात हो रही है और वो जो संस्थान होंगे वो पीपीपी मॉडल पर होंगे। पीपीपी मॉडल का मतलब है कि जिसमें सरकार भी भागीदार होगी, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स भी भागीदार होंगे और वो फिर मॉडल का काम करेगी। मतलब सरकार और निजी उद्यमी निजी उद्योगपति मिलकर जब काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं पीपीपी मॉडल। पब्लिक यानी कि सरकार, प्राइवेट यानी कि निजी क्षेत्र और पार्टनरशिप, यह है पीपीपी मॉडल। आपको याद होगा फ्रेंड्स कि 1947 के बाद आपने पढ़ा होगा ये कि हमने जो इकोनॉमी का मॉडल अपनाया वो मिक्स्ड इकोनॉमी का था। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या था, थोड़ा सा फर्क है इन दोनों में कि जो निजी क्षेत्र हैं वो अपने उद्योग लगाएंगे और जो सरकारी क्षेत्र जिसे हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं वो अपना उद्योग लगाएंगे और दोनों अपने अपने काम करेंगे। न तो सब कुछ सरकार करेगी और न ही सब कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में सौंपा गया। इस पद्धति पर हमारा देश बहुत लंबे समय तक चलता रहा, तब तक जब तक कि 1991 में हम लिबरलाइजेशन की घोषणा हमने नहीं की। लिबरलाइजेशन के बाद धीरे धीरे मुश्किल से 4-5-6 साल ही बीते थे कि पीपीपी मॉडल काफी चर्चा में आने लगा और यह हुआ कि ठीक है सरकार अपना काम कर ही रही है, प्राइवेट भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों आपस में मिलकर के भी काम करें। तो इस तरीके से दो स्वरूप प्राइवेट और पब्लिक के साथ साथ एक और मॉडल आया कि दोनों मिलकर काम करेंगे। ये है दोस्तों पीपीपी मॉडल। आपने न्यूज में यह भी सुना कि सॉफ्टवेयर में तो भारत बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन हार्डवेयर में वो बहुत पीछे है। और आपको मालूम है कि कंप्यूटर और इस संचार प्रणाली से संबंधित जो हार्डवेयर है वो ज्यादा से ज्यादा हार्डवेयर हमें विदेशों से आयात करने पड़ते हैं। तो उसमें यह महसूस किया गया है कि यदि आईआईटी सेक्टर में पीपीपी मॉडल अपनाया जाए तो बहुत अच्छे से हम अपनी इस कमी को भी पूरा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो प्राइवेट लोग होते हैं उनमें कुछ अलग तरह की विशेषताएं तो होती हैं। एक तो कैपिटल की कमी जो सरकार के पास होती है कम से कम उसकी भरपाई हो जाती है। दूसरा यह है कि वो सब प्रोफेशनल्स होते हैं तो जो पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही व्यावसायिक स्तर का हो जाता है। और तीसरी बात दोस्तों कहीं ना कहीं यह है कि चूंकि प्राइवेट पर्सन ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, पैसा लगाया है, तो सच बात है कि वो लाभ की दृष्टि से भी सारी चीजों को सोचेगा। इसलिए न्यूज में आपने एक बात और भी सुनी होगी और वो ये था कि हमारे मंत्री ने स्पष्ट किया कि लोग इस आशंका में न रहें कि पीपीपी मॉडल होने के बाद चीजों की कीमत बढ़ जाएगी, यह भय उन्हें नहीं सताना चाहिए क्योंकि सरकार भी उसमें शामिल होगी तो सरकार कहीं न कहीं रेगुलेट करेगी। जैसे टोल टैक्स देखिए, आप सब सफर करते ही हैं और बहुत जो अच्छी रोड बनी हुई है तो उसमें बीच में एक नाका पड़ेगा और वहां फिर आपको टोल टैक्स देना पड़ता है, वो पीपीपी मॉडल के तहत है। तो ऐसा नहीं है कि जिसने सड़क बनाई है वो कुछ भी किराया टोल टैक्स फिक्स कर देगा, नो, सरकार उसको रेगुलेट करती है। उसमें बकायदे उसका फार्मूला है कि कितना खर्च हुआ है और डेली कितनी गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं, कितने साल में इसका पैसा वसूल होना चाहिए, उस आधार पर उसका रेट फिक्स किया जाता है। तो सरकार ऐसा नहीं है कि उनको फ्री छोड़ देगी, आफ्टर ऑल सरकार भी कहीं ना कहीं उसमें भागीदार है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है फ्रेंड्स कि ये काफी समय हो चुका है, इसको लगभग 20 साल हो गए हैं इस मॉडल को काम करते हुए, लेकिन ज्यादातर जो पीपीपी मॉडल के तहत काम हुए हैं उनमें असफलता ही मिली है, और उसके अपने बहुत ही वैलिड रीजन हैं, उनके बकायदे बीच बीच में रिव्यू होते रहे हैं और उनको दुरुस्त किए जाने की कोशिशें भी होती रही हैं। तो पीपीपी मॉडल पर आपकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। अभी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू चल रहा है, और मुझे लगता है कि ये सिविल सर्विस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आप सबकी बहुत तीखी और डेप्थ दृष्टि होनी चाहिए, वह दोस्तों निजता का अधिकार। आपको मालूम है कि खासकर आधार कार्ड को सभी से लिंक करने के मामले को लेकर के बहुत सी जनहित याचिकाएं दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट के पास आप समझिए कि 20-22 याचिकाएं पहुंच गई कि आधार कार्ड को जिस तरीके से हर चीज में अनिवार्य किया जा रहा है। तो हम जो अपने बारे में जानकारियां दे रहे हैं, सरकार के पास सारी जानकारियां हैं, तो इनकी सुरक्षा का क्या इंतजाम है? यानी कि ये हमारे निजी डेटा हैं, हमारी निजी जानकारियां हैं, और सरकार के पास ये निजी जानकारियां हैं, कुछ लोगों के पास निजी जानकारियां हैं। तो अगर ये निजी जानकारियां लीक हो जाती हैं, बाहर चली जाती हैं, तो फिर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, जैसे क्राइम हो सकता है, हमारी हैकिंग हो सकती है, सरकार इसके माध्यम से लगातार हमारी निगरानी कर सकती है, तो इसकी इससे भी हमारा जो निजता है, हमारी जो निजता है वो भंग होगी, हमें ऐसा लगेगा जैसे कि कोई हमारा बॉस है वो लगातार देख रहा है। हमारे इन डेटा का उपयोग जो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं अपने व्यावसायिक लाभ के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सी आशंकाएं मन में हैं और इसको लेकर के लगभग 20-22 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के पास दायर हैं। तो अब अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इसे 9 जजों की संविधान पीठ को सौंपा है, मतलब एक बॉडी है जजेस की जिसमें 9 जजेस हैं और इस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप जब सुनवाई हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट फाइनल आ जाएगा उसी पर डिपेंड न करें। यह बहुत अच्छा मौका है, अखबारों में इसकी रिपोर्टिंग आ रही है, आप उन रिपोर्टिंग्स को पढ़ें और देखें कि दोनों पक्ष क्या क्या दलील दे रहे हैं। दोनों पक्ष का मतलब है कि जिन्होंने याचिकाएं दायर की हैं वो क्या दलील दे रहे हैं, किस आधार पर मांग कर रहे हैं निजता के अधिकार की, और दूसरा कि जब जजेज सुन रहे हैं तो वो किस तरीके के कमेंट कर रहे हैं। ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, दोनों तथ्य इंपॉर्टेंट होंगे, तब आपकी इस पर गहरी पकड़ बन पाएगी। एक तथ्य बात मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि देखिए जो इस पर जो याचिकाएं दायर की गई है और जो सुनवाई चल रही है उसके केंद्र में क्या है, बेसिक क्या है। उसकी बेसिक केवल यह है कि जो निजता का अधिकार है, जो प्राइवेसी है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है या नहीं है, बस इस पर इसके केंद्र में सारी सुनवाई चल रही है। तो मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप लगातार इस पर निगरानी रखें। जैसे कि कल ही जो बहस हुई है तो उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा है कि देखिए प्राइवेसी और सुरक्षा का अधिकार दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, और यदि देश को कोई जानकारी दी गई है तो आप उसे प्राइवेसी की कसौटी पर नहीं कस सकते। राष्ट्र को अगर कुछ जानकारियां आपकी चाहिए तो आप इसे अपने निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कह सकते। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप इस तरह की कोई सूची नहीं बना सकते, कोई कैटलॉग नहीं बना सकते कि कौन कौन से तत्व मिलकर प्राइवेसी का निर्धारण करते हैं, और यदि ऐसी सूची बनाई गई तो उसके जो परिणाम होंगे वो बहुत विनाशकारी होंगे, ये कोर्ट ने कहा है। और उन्होंने जो याचिकाकर्ता हैं उनके जो एडवोकेट हैं उन्होंने अपनी दलीलें दी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आपकी लगातार निगाह रहनी चाहिए। इस पर आधारित मैं आज आपको 2 एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं। मित्रों, आइए अब हम आज के मुख्य विषय पर आते हैं। एकल संक्रमणी मत, जिसे हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक अगर आप जानते होंगे एक तथ्य, और वो ये कि राज्यसभा के हमारे जो सदस्य चुने जाते हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है। आपको मालूम है फ्रेंड्स कि जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं वो किसी न किसी राज्य से आते हैं, सबकी सीट अलग अलग है, राज्यों का कोटा निर्धारित है। जैसे लोकसभा में सबकी सदस्य संख्या निर्धारित है ना कि यहां से इतने सांसद चुने जाएंगे राज्य से, तो राज्यसभा में भी निर्धारित है कि मध्य प्रदेश से 16 चुने जाएंगे, फलाने से 20 चुने जाएंगे, इस तरीके से निर्धारित है। और जो मतदाता होते हैं, जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, वो उस राज्य के विधानसभा के सदस्य होते हैं। ये जो राज्यसभा के सदस्यों का भी जो चुनाव होता है, याद रखिए, वो एकल संक्रमणीय मत द्वारा ही होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा ही उनका चुनाव होता है। शायद आपको, मुझे नहीं मालूम कि जानकारी थी या नहीं थी, लेकिन ये जानकारी होनी चाहिए। अब आप देखिए कि इसका अर्थ क्या है, राइट। हालांकि इसमें संक्रमण शब्द जो आया है वो संक्रमण का मतलब होता है दो मिलना दहलीज पर, जैसे सायंकाल को, संध्या समय को, इवनिंग जो टाइम होता है जब सूरज डूब रहा है और अंधेरा छाने को है, उसको हम कहते हैं संक्रमण काल। मतलब एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, या दोनों बिल्कुल मिल गए हैं। जैसे हमारे घर की जो दहलीज है उसको आप संक्रमण बिंदु कह सकते हैं। तो संक्रमण शब्द आ गया है, जबकि ट्रांसफरेबल का मतलब है हस्तांतरणीय हो सकता है, कि आप हस्तांतरित कर रहे हैं। लेकिन खैर चलिए, ये तो हमारा मतलब एक ट्रांसलेटेड वर्ड है, इसमें हम नहीं बदल सकते। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हस्तांतरणीय शब्द होता तो शायद आप लोगों को समझने में ज्यादा आसानी होती। तो समझने के लिए आप हस्तांतरणीय शब्द सुन लें, लेकिन लिखने में संक्रमणीय आप इस्तेमाल कीजिएगा। अब आप देखिए इसमें होता क्या, दो तीन चीजें आप स्पेशली इसमें याद रख लीजिए। पहली तो बात है कि ये फिक्स होता है कि आपको इतने वोट हासिल करने पड़ेंगे। अब मैं राष्ट्रपति के संदर्भ में बात करता हूं कि जो राष्ट्रपति जिन्हें बनना होगा, जैसे मान लीजिए 10 लाख वोट हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि जो सबसे ज्यादा जिसे मिलेंगे वोट वो राष्ट्रपति बन जाएगा, नहीं। उसका फार्मूला ये कि कोटा निर्धारित किया गया है कि 50% से एक ज्यादा, जैसे हमारे लोकसभा में कौन सरकार बनाएगा तो 50% से एक ज्यादा, कम से कम ये न्यूनतम है। तो 5,01,000 वोट जिसको मिलेंगे वही राष्ट्रपति बन पाएगा। अब सवाल यह कि ऐसा कैसे संभव होगा। मान लीजिए कि 5 कैंडिडेट खड़े हैं, 5 कैंडिडेट राष्ट्रपति के लिए खड़े हैं, और अगर किसी राष्ट्रपति को जो सबसे अधिक जो वोट मिले हैं उनको 4,00,000 मिले, तो बाकी को ठीक है 3,00,000, 2,00,000, 1,00,000 मिले हैं, लेकिन 4,00,000 वाले अब राष्ट्रपति कैसे बनेंगे? तो क्या उनका फिर से चुनाव कराया जाए, फिर से मतदान कराया जाए? और फिर से आप मतदान करा दीजिए तो पता लगा फिर से वही हो रहा है, तो अब आप क्या करेंगे? तो इस समस्या से निपटने के लिए ट्रांसफरेबल सिस्टम किया गया है। अब देखिए कि ट्रांसफरेबल सिस्टम कैसे काम करता है। मित्रों, एक मतपत्र होता है, मतपत्र में जितने भी कैंडिडेट है, जैसे हम चलिए उदाहरण के तौर पर 5 कैंडिडेट ले लेते हैं, तो 5 कैंडिडेट के नाम है, 1, 2, 3, 4, 5, चलिए हम कह देते ए बी सी डी ई, ये 4 कैंडिडेट है। अब जो वोट डालने वाला है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वोट डालने वाला है वह हर कैंडिडेट के सामने अपना प्रेफरेंस नंबर शो करेगा, ठीक वैसे जैसे कि जब आप सिविल सर्विस मेंस का फॉर्म भरेंगे तो आपको अपने सर्विस का प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि आपके पहले प्रेफरेंस में कौन सी सर्विस है, फिर दूसरे में कौन सी है, फिर तीसरे में कौन सी है। तो यहां जो हमारे सांसद हैं या हमारे जो एमएलए हैं वो राष्ट्रपति के लिए अपना प्रेफरेंस देंगे। जैसे मान लीजिए कि आप सांसद हैं तो आपको लगता है कि नहीं, जो सी कैंडिडेट है वो आपके दृष्टि से बेस्ट है, तो आप सी के सामने लिखेंगे 1। अगर आपको लगता है कि नहीं ए जो कैंडिडेट है वो बेकार है, तो सबसे लास्ट प्रेफरेंस आप देंगे तो उसके सामने आप लिख देंगे 5। तो इस तरीके से आप अपना प्रेफरेंस सभी के सामने लिखेंगे, और ऐसा हर कोई करेगा, राइट। अब ये वोट आ गए, जितने मतदान हुए हैं वैध मत हैं उसमें एक जोड़ना होगा। फार्मूला ये है कि जैसे मान लीजिए 10,00,000 वोट थे, 9,00,000 वोट पड़े, तो अब 9,00,000 का आधा होगा, है ना, ऐसा नहीं कि 10,00,000 का आधा करेंगे, जितने वो वैध मत हैं उसके 50% + 1, ये इसका फार्मूला है जो आपको मालूम होना चाहिए। अब आप देखिए कि इसकी काउंटिंग शुरू होगी, तो पहले राउंड की काउंटिंग में उन कैंडिडेट को निकाला जाएगा कि सबको फर्स्ट प्रेफरेंस के कितने वोट मिले हैं, राइट। तो ए को कितने मिले फर्स्ट प्रेफरेंस में, ए को कितने लोगों ने अपनी पहली बारी पसंद बनाया है, बी को कितना, सी को कितना, डी को कितना, ई को कितना, राइट। अब इसमें मान लीजिए कि सबसे अधिक वोट मिले ए को, उनको पहले पसंद के वोट मिल गए हैं 4 लाख, लेकिन पूरे नहीं मिले, 5 लाख मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। इसमें अब ये देखा जाएगा इनफैक्ट कि सबसे कम किसको मिले हैं, पहली पसंद का सबसे कम कैंडिडेट कौन है। तो उसमें मान लीजिए कि डी आए, डी कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिले हैं, लोगों ने पहली पसंद में सबसे कम वोट दिए हैं। अब क्या होगा कि इस कुर्सी रेस में, अगर आप कहें इसको कुर्सी रेस, तो इसमें से डी को निकाल दिया जाएगा कि भाई ये तो फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं है, अब उसमें से डी निकल जाएंगे। अब ये देखा जाएगा कि डी के वोट में जो वोट दिए गए हैं उसमें से किस किस ने अपने सेकेंड प्रेफरेंस में किस किस को रखा है, किस किस ने सेकेंड प्रेफरेंस दिया है। अब आप देखिए डी के वोट तो निकल गए, तो अब कितने कैंडिडेट रेस में रह गए, ए बी सी और ई। तो अब ये देखा जाएगा कि सेकेंड प्रेफरेंस में ए बी सी और ई को कितने कितने मिले, और इनके जो वोट है, डी के जो वोट है, वो ए बी सी और ई को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे सेकेंड प्रेफरेंस के रूप में। और ट्रांसफर करने के बाद अब फिर से जोड़ा जाएगा कि हां अब कितने वोट हुए। अब मान लीजिए कि हो गए फार्मूला में पूरा, तो जिसको जिसके हो जाएंगे पूरे उनको राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा, और अगर अभी भी नहीं हो रहे हैं तो फिर अब देखेंगे कि अब किसको बाहर निकालना है। तो इसी पैटर्न पर फिर से अब एक कैंडिडेट को बाहर निकालेंगे और फिर उनके जो वोट हैं वो तीसरे प्रेफरेंस के रूप में शिफ्ट कर देंगे। और एक स्थिति ऐसी आएगी ही कि जब किसी भी एक व्यक्ति को मोर देन 50% वोट मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक होगा ये मैथमेटिक्स है, और उन्हें विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो इसमें यह भी होता है फ्रेंड्स कि जरूरी नहीं कि जिन्होंने पहले जो सबसे अधिक वोट पाया हो अंत तक वो जीतेगा, नहीं पता लगा कि सेकेंड राउंड में बी आगे आ गए या ई आगे आ गए, वी डोंट नो, क्योंकि सेकेंड प्रेफरेंस में सबसे ज्यादा किसने दिया है वो बहुत ज्यादा काउंट करता है। तो अब आपने देखा कि कैसे एक का वोट जो है ट्रांसफरेबल है, दूसरे को दे दिया जा रहा है। मित्रों ये है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और मुझे लगता है कि शायद अब आपकी थोड़ी सी समझ में बात आ गई होगी, और अगर नहीं आई हो तो फिर देखें कि बुक्स कोई ले लें और उसमें इसे समझाने की कोशिश की होगी। तो दोनों को आप जब कंबाइन कर देंगे तो मुझे लगता है कि तथ्य और अच्छे से आपके समझ में आ जाएंगे, अगर समझ में नहीं आया हो तो। तो दोस्तों अब मैं आता हूं आज के न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। मैंने कुछ क्लिपिंग्स के बारे में बताया आपको, आज मैं आपको दैनिक जागरण की एक बहुत अच्छी क्लिपिंग प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों, वो है डॉक्टर भरत झुनझुनवाला का। इनके नाम से कम मेरे जो प्रिय श्रोता है बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे। इसमें इन्होंने प्राइवेटाइजेशन पर बहुत अच्छा लेख लिखा है, जैसे आपको मालूम है ना कि एयर इंडिया को प्राइवेट करने की बात चल रही है, तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि प्राइवेट किया जाना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दोनों पक्षों को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसको फ्रेम किया है, इसे आप जरूर पढ़िएगा। मित्रों अब मैं आता हूं स्वागत के चरण पर, और मैं अब विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दो मित्रों के नाम हैं अभिनव श्रीवास्तव, आप राजकोट गुजरात से हैं, और संजीव कुमार, आप एटा उत्तर प्रदेश से हैं। तो आप दोनों साथियों का मित्रों में एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज का हमारा यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।